समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। स्वामी विवेकानंद के इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर शुरू करते हैं आज सवेरे कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार लेकर और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूँ मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेणु कटारिया। रेणु, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar Mukesh and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani network. And dear listeners, you're listening to Aaj Savere, our exciting daily news magazine program. And as Mukesh has already informed, over the next half an hour, we will bring you the latest from national and international news, updates from metro cities and fascinating historical tidbits about this day, that is the 3rd of December. Lekin Mukesh, before we dive in, I want to share something very special with our listeners.
Ji, bilkul.
So today we are observing the International Day of Persons with Disabilities, and what better way to honor the day than with this empowering quote by Mary Kay Ash, who says, "Aerodynamically, the bumblebee shouldn't be able to fly. But the bumblebee doesn't know that, so it goes on flying anyway." So we will explore this theme further in our On This Day segment. Lekin pehle, let's get started with today's top headlines.
Ji haan, nazar dalte hain ab tak ke mukhya samacharon par. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सफल कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में जानकारी देंगे। ये कानून इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू किए गए थे। इन कानूनों का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और समकालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। कार्यक्रम का विषय है सजा से न्याय के परिप्रेक्ष्य में सुरक्षित और विकसित भारत। कार्यक्रम के दौरान नए कानूनों के व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा होगी।
President Draupadi Murmu will confer national awards for empowering persons with disabilities to 33 exemplary individuals and institutions on International Day of Persons with Disabilities 2024 in New Delhi today. On the occasion, Social Justice and Empowerment Minister Dr. Virendra Kumar will also unveil 16 transformative initiatives aimed at enriching the lives of persons with disabilities. These initiatives span inclusivity, innovation, and technology, reinforcing the department's commitment to empowerment. Some of the key initiatives include the launch of the Kadam Knee Joint Pathways to Access Path 3 and the Braille Book Portal.
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने निवेश सहित सभी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखे जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के सम्मेलन में कल डॉ. जयशंकर ने कहा कि नीति निर्माताओं को निवेश सहित सभी आर्थिक निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के नजरिए से लेने होंगे। उन्होंने विकास सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय साझेदारों के सहयोग से काम करने का सुझाव दिया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध समय के साथ और प्रगाढ़ हुए हैं, जिससे सहयोग के अधिक अवसर उपलब्ध हुए हैं।
The foreign direct investment FDI has witnessed tremendous growth of 45% to over $29 billion in April to September this year as compared to the same period last year. According to Department for Promotion of Industry and Internal Trade, the main sectors of the economy that benefited from the FDI include services, computer software and hardware, telecom, automobile, pharmaceuticals and chemicals. The FDI inflows lead to higher investments and job creation in the economy along with better technology.
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि खेलो इंडिया योजना ने पैरा एथलेटिक्स सहित 21 खेलों में 2,781 एथलीट्स की पहचान की है। उन्होंने कहा कि इन एथलीट्स को खेलो इंडिया प्रतिभा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। लोकसभा में कल डॉक्टर मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, चिकित्सा देखभाल, उपकरण और मासिक भत्ते के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।
And moving on to some news on our climate, Cyclone Fenjul has caused widespread devastation, bringing record rainfall and flooding to Puducherry and parts of Tamil Nadu. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has appealed to the centre to provide 2,000 crore rupees as relief fund for the state affected by Cyclone Fenjul. In his letter to Prime Minister Narendra Modi, the Chief Minister said that the damages will be assessed soon as the inundated rainwater drains from the paddy fields. In Tamil Nadu, all the 7 bodies of those killed in the flood-triggered landslide at Thiruvannamalai were retrieved from the debris yesterday. In the state, 13 people have lost their lives in rain-related incidents till now. In Puducherry, 4 persons were killed in rain-related incidents, while 2 others are still missing. And some international news, Mukesh. An anti-terrorism court, ATC in Pakistan, issued non-bailable arrest warrants for Pakistan Tehreek-e-Insaf founder Imran Khan, his wife Bushra Bibi, Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister Ali Amin Gandapur, and 93 other party leaders. The warrants stem from allegations of violence in rioting during recent protests in Islamabad.
फ्रांस में सामाजिक सुरक्षा बजट विधेयक को सांसदों के मतदान के बिना पारित करने की विशेष शक्तियों का उपयोग करने के बाद प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर की अल्पमत सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। दक्षिणपंथी और वामपंथी पार्टियों ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री बर्नियर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करेंगे। श्री बर्नियर ने कहा कि वे सामाजिक सुरक्षा विधेयक को बिना मतदान की संसद में पारित कराने का प्रयास करेंगे। आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है महानगरों की खबरें जानने का, तो सबसे पहले आप बताएं कि चेन्नई की क्या खबरें हैं।
हाँ जी, मेरे पास 2 खबरें हैं चेन्नई से, सो आई विल बिगिन विद द फर्स्ट वन। The Indian Navy will take out a 2-wheeler rally in Tamil Nadu from tomorrow, the Sea Riders Odyssey, in collaboration with Royal Enfield, Orazo and Indian Oil Corporation, aims to spread awareness about the Indian Navy's vital role in national security while fostering pride and connection with the public. The rally will cover 2,500 kilometers across the state in 13 days. The rally will also see participants visiting schools, colleges and heritage sites to engage with community, promote the Navy's values and showcase its contributions to the nation. The rally will be received by the Flag Officer Commanding Tamil Nadu and Puducherry Naval Area on the day of the grand finale. The Navy Day celebrations are observed annually to mark its role in Operation Trident during the 1971 Indo-Pak War. This operation marked by the sinking of 4 Pakistani vessels, including the PNS Khyber, stands as a testament to the Navy's strategic brilliance and courage. Moving on to more news from Chennai, the Greater Chennai Corporation will reopen public parks today after their closure on Friday due to Cyclone Fenjul. Over the past 2 days, the corporation has cleared approximately 300 tons of garden waste from the parks. And moving on to you, Mukesh, aap bataiye.
Ji haan, main Mumbai ki samacharon ki baat karte hain hum. Maharashtra Grih Nirman aur Kshetra Vikas Pradhikaran MAHDA ke Konkan board ne Pradhanmantri Awas Yojana ke antargat pehle aao pehle pao ke aadhar par 14,000 se adhik awas ikaiyan bechne ke liye jagrukta abhiyan shuru kiya hai. Mumbai mein kal Konkan board ki mukhya karyakari adhikari रेवती गायकर ने कहा कि नगर निगम कार्यालयों, जिला कलेक्ट्रेट, रेलवे स्टेशन और धार्मिक केंद्रों पर 29 सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। ये आवास इकाइयां कल्याण, विरार और ठाणे जिलों में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से निष्क्रिय जमा खातों की संख्या में कमी लाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने बैंकों से समाज के वंचित वर्गों के खातों को सक्रिय करते समय सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने को भी कहा है।
And moving on to Bengaluru, Karnataka Home Minister Dr. G. Parmeshwara has urged Chief Minister Siddaramaiah and Deputy Chief Minister D.K. Sivakumar to consider Tumkuru as the site for Bengaluru's proposed second airport. Speaking at a foundation stone laying ceremony in Tumkuru yesterday, Dr. Parmeshwara highlighted the city's growing infrastructure and strategic importance. He noted that Asia's largest industrial park is being developed in Tumkuru, and the Chief Minister has initiated a feasibility study for introducing metro rail to the city. Furthermore, the Chief Minister has laid the foundation stone for an international cricket stadium in the city.
और रुक करते हैं कोलकाता का, तो 16वें वित्त आयोग की पश्चिम बंगाल के राज्य सचिवालय नवन्ना में आज शाम संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उपस्थित रहेंगे और बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में विभिन्न संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है।
चलते हैं हैदराबाद। Air Commodore Vikasshil Singh Saini has taken over as the Air Officer Commanding of Air Force Station Hakimpet. He assumed charge from Air Commodore Pankaj Jain yesterday during an impressive parade to mark the occasion. Air Commodore Vikasshil Singh Saini was commissioned into the fighter stream of the Indian Air Force in 1998. He's an alumnus of the National Defence Academy and a graduate of the Defence Services Staff College, and in recognition of his distinguished service, Air Commodore Saini was conferred with the Vayu Sena Medal in 2018.
और अब रुक करते हैं राजधानी दिल्ली के समाचारों का, तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली सरकार से आयुष्मान भारत और आयुष्मान व्यय वंदना योजना को दिल्ली में लागू करने का एक बार फिर आग्रह किया है। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कल एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार के कई बार आग्रह करने के बाद भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने इन योजनाओं को राजधानी में लागू नहीं किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी 5 दिसंबर से अपने घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव मांगेगी। मीडिया के साथ बातचीत में भाजपा सांसद रामवीर विधूड़ी ने कहा कि भाजपा मेरी दिल्ली मेरा संकल्प भाजपा विषय के अंतर्गत पार्टी लोगों से सुझाव के लिए जनता के पास जाएगी। श्री विधूड़ी ने कहा कि जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए सभी 14 जिलों में वीडियो वैन तैनात की जाएंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि डीडीए द्वारा आयोजित अनधिकृत कॉलोनी के निवासियों के लिए लंबित पीएम उदय आवेदनों में तेजी लाने और उसके निष्पादन के लिए विशेष सिंगल विंडो कैंप में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सक्सेना ने कहा कि पिछले 2 दिन में ही 10 विशेष शिविरों में 6,654 लोगों ने इसमें सहभागिता की है। वहीं उपराज्यपाल ने बताया कि इस कैंप में मालिकाना हक के लिए 1,028 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह चहल ने 24 घंटे पानी की आपूर्ति के बारे में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत हर घर जल के माध्यम से हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का सपना पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीएमसी के पास नलों के माध्यम से हर दिन स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक योजना है। और नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सरस फूड महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित ये मेला 17 दिसंबर तक चलेगा और मंत्रालय के अनुसार इस महोत्सव का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और खानपान की विविधता को प्रदर्शित करना है। रेनू, देश दुनिया के समाचार हो गए और सभी महानगरों की भी खबरें हो गईं, तो अब बारी आती है खेल जगत की हलचल की। तो खेल जगत की हलचल लेकर स्टूडियो पहुंच चुके हैं हमारे सहयोगी विशाल। विशाल, आप बताएं कि आज खेल खबरों की कहां से शुरुआत कर रहे हैं?
जी हाँ मुकेश, आज खेल खबरों की शुरुआत हॉकी से। ओमान के मस्कट में अंडर 19 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम ने सभी 4 ग्रुप मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए अंतिम 4 में प्रवेश किया था। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और जापान आमने सामने होंगे। इससे पहले भारतीय टीम ने जापान को अंतिम लीग मैच में 8-1 से हराया था। शारजाह में अंडर 19 एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने जापान को 211 रन से हरा दिया है। 340 रन के लक्ष्य के जवाब में जापान की टीम निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 128 रन ही बना सकी। केपी कार्तिकेय, हार्दिक राज और चेतन शर्मा ने 2-2 विकेट लिए। इससे पहले मोहम्मद अमान के 122 रन के सहारे भारत ने 6 विकेट पर 339 रन बनाए थे। केपी कार्तिकेय ने 57 और आयुष महात्रे ने 54 रन की पारी खेली। भारतीय टीम पहले मैच में पाकिस्तान से 43 रन से हार गई थी। नई दिल्ली में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत कल पहले मैच में हांगकांग से खेलेगा। भारत पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। दीक्षा कुमारी की अगुवाई में भारतीय टीम को प्रतियोगिता में एशिया की कुछ शीर्ष टीमों के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। भारत को ग्रुप बी में जापान, ईरान और हांगकांग जैसी मजबूत टीमों के साथ रखा गया है।
धन्यवाद विशाल। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे, मुकेश कुमार और रेनु कटारिया के साथ। आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आमतौर पर मौसम सामान्य रहेगा। सवेरे के समय आज हल्का कोहरा छाया रहा। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता का रुख करें तो कोलकाता में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और चलते हैं मुंबई। मुंबई में भी कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
एंड मूविंग ऑन टू, सॉरी आप कुछ कह रहे थे मुकेश, ठीक है चलते हैं चेन्नई। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 26 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 31 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद मॉडरेट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 20 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 23 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन और ड्रिजल। द टेम्परेचर विल हवर between a minimum of 22 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
और रेनु कार्यक्रम में अब हम इस पड़ाव पर आ गए हैं कि जहां पर हम बात करते हैं इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानते हैं कि उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जो आज के दिन इतिहास का हिस्सा बनी। और आज 3 दिसंबर है।
जी बिल्कुल। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू मोर ऑन द हिस्ट्री सेगमेंट, आज एक बहुत ही खास दिन, महत्वपूर्ण दिन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो टुडे दैट इज डिसेंबर द 3rd मार्क्स द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, अ यूएन डे डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग द राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी एंड रेजिंग अवेयरनेस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशंस to political, social, economic and cultural life.
बिल्कुल रेनु, जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं और इस दिशा में खेलों में भी बढ़ चढ़कर जो दिव्यांगजन हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जो पैरालंपिक खेल हुए हैं या जो भी खेल हो रहे हैं उनमें जो दिव्यांगजन हैं वो महत्वपूर्ण अच्छा प्रदर्शन करके सामने आ रहे हैं।
जी एंड टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, बिफोर दैट वी विल टॉक अबाउट द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। दिस ईयर्स थीम इज ड्रिवन बाय द ग्लोबल डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट, Nothing about us without us. It underscores the importance of participation, representation and inclusion, calling for persons with disabilities to actively shape the conditions of their lives. और यहाँ पे अगर हम स्पोर्ट्स की बात जैसे आप बोल रहे हैं तो स्पोर्ट्स हैज बीन अ रिमार्केबल एरिया ऑफ प्रोग्रेस लेटली एंड इंडिया हैड इट्स ब्रेक थ्रू मोमेंट एट द 2012 लंदन पैरालंपिक्स व्हेन गिरीशा नागरजगौड़ा वन सिल्वर इन द मेंस हाई जंप। दैट लोन मेडल स्पार्क्ड अ नेशनल कॉन्वर्सेशन अबाउट द नीड फॉर ग्रेटर सपोर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन एंड सिंस देन मुकेश इंडियाज पैरालंपिक जर्नी हैज बीन वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। देखिए फ्रॉम 4 medals at Rio 2016 to 20 at Tokyo 2020 and an impressive tally of 29 medals at the Paris Paralympics. And standout performances included Sheetal Devi, who competes without arms and clinched a bronze in mixed compound archery. In an inspiring interview, she had shared that she never saw herself as disabled, but instead trained herself to compete alongside so-called Abled athletes. तो यहाँ पर सुनते हैं शीतल जी को।
जी बिल्कुल।
मेरे को कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरे हाथ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने वो पहले बार उठाया था, बहुत भारी लग रहा था, मेरे को उठा ही नहीं जा रहा था। तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने डंबल ट्रेनिंग की, एक्सरसाइज की, लेगेज की, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके होने लगा। तो जब मैंने पहला तीर चलाया था तो मैं बहुत खुश हुई थी तब कि मेरे से चल गया वो तीर। मैं सोच रही थी जब मैंने पहले एबल में मेडल जीता था तो तभी भी बहुत खुशी हुई थी कि पहला मेडल है ये मेरा। और तब मुझे एबल या पैरा कुछ भी नहीं पता था, एबल और पैरा क्या होता है। तो खेला और मैंने मेडल जीता।
और रेनू, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1992 में हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को प्रोत्साहन देना और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना था। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर, समावेशी शिक्षा और रोजगार जैसी सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में समाज को प्रेरित करना है। साथ ही विकलांगता को लेकर सामाजिक भेदभाव और असमानता को समाप्त करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है।
एंड सो टुडे लेट्स सेलिब्रेट नॉट जस्ट दीज अचीवमेंट्स बट आल्सो द स्ट्राइड्स मेड टुवर्ड इंक्लूजन, पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट फॉर पर्संस विद डिसएबिलिटीज।
और रुक करते हैं 2004 का। 2004 में आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान 40 वर्षों के बाद मुनाबाव और खोखरा पार के बीच रेल संपर्क फिर से बहाल करने के लिए सहमत हुए थे।
मैं काफी पीछे जा रही हूँ। इन द ईयर 1736 एस्ट्रोनॉमर एंडर्स सेल्सियस टुक मेजरमेंट्स दैट कंफर्मड न्यूटन्स थियोरी दैट द अर्थ वाज एन एलिप्सॉइड रादर देन द प्रीवियसली एक्सेप्टेड स्फीयर। और 1911 में चले 1911 विलीस कैरियर प्रेजेंटेड हिज इन्फ्लुएंशियल रैशनल साइकोमेट्रिक फॉर्मूले ऑन एयर कंडीशनिंग टू द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, मेकिंग एयर कंडीशनिंग पॉसिबल। ये बहुत अच्छी न्यूज है।
बिल्कुल। और एक साल पहले हम चलते हैं, यानी 1910 की बात करते हैं, तो आज ही के दिन फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री जॉर्जेस क्लाउड द्वारा विकसित विश्व के पहले नियोन लैंप का पहली बार पेरिस के मोटर शो में प्रदर्शन किया गया।
एंड इफ वी मूव टू द ईयर 1955 ऑन दिस डे इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द प्रोविजन इन आर्टिकल 3432 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, orders were issued for the use of the Hindi language in addition to English for specific purposes to the Union. And in 1967, aaj ke din, that is 3rd of December, Christian Bernard of South America performed the first human heart transplant at Grootish Kur Hospital in Cape Town. Moving on to 1971, on this day, India recognized Bangladesh. The Indian Army marched into Bangladesh and joined hands with the Mukti Bahini. The Pakistani Army in Bangladesh surrendered to the Indian commander. Moving on to the year 1973, the Pioneer 10 passed Jupiter, achieving the first flyby of an outer planet. In the year 1979, on 3rd of December, Iran accepted its constitution. Aur jo last khabar mere paas hai, wo 1984 year ki hai. A gas leak from a Union Carbide plant in Bhopal, India, spread over a populated area, resulting in 15,000 to 20,000 deaths and leaving about 500,000 survivors with chronic medical ailments on this day, that is the 3rd of December.
जी हाँ, हम बात करते हैं 1994 की। 1994 में आज ही के दिन ताइवान में पहले स्वतंत्र स्थानीय चुनाव संपन्न हुए थे। और 2002 की बात करें तो यूएनईपी ने भारत समेत 7 उष्णकटिबंधीय देशों में जैव विविधता के अध्ययन के लिए 2,60,00,000 जारी किए थे। और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत के महान हॉकी खिलाड़ी जिनकी गिनती श्रेष्ठतम कालजयी खिलाड़ियों में होती है। जी हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद की। आज उनकी पुण्यतिथि है। मानना होगा कि हॉकी के खेल में ध्यानचंद ने लोकप्रियता का जो कीर्तिमान स्थापित किया, उसके आसपास भी आज तक दुनिया का कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है। मेजर ध्यानचंद रात में भी बहुत अभ्यास करते थे, इसलिए उनके साथी खिलाड़ी द्वारा उन्होंने उपनाम चांद दिया गया था। दरअसल उनका यह अभ्यास चांद के निकल आने पर शुरू होता था। और 1979 में दादा ध्यानचंद की कोमा में जाने से मौत हुई थी, लेकिन जब तक वो होश में रहे, भारतीय हॉकी के प्रति हमेशा चिंतित रहे।
और अगर हम उनके ऑनर्स की बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर हिम टू ऑनर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन स्पोर्ट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गिव्स दिस अवार्ड एनुअली टू इंडियाज बेस्ट परफॉर्मर इन इंटरनेशनल लेवल चैंपियनशिप्स। और ध्यानचंद अवार्ड इज अ लाइफ टाइम अचीव अचीवमेंट अवार्ड नेम्ड आफ्टर ध्यानचंद।
बिल्कुल, ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और 3 बार देश को स्वर्ण पदक दिलाया था। आंकड़ों से भी पता चलता है कि वो वास्तव में हॉकी के जादूगर थे। भारत ने 1932 में 37 मैच में 338 गोल किए थे, जिसमें 133 गोल केवल ध्यानचंद ने किए थे। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ध्यानचंद ने 1928 में एमस्टरडम, 1932 में लॉस एंजलिस और 1936 में बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाए थे। और दूसरा विश्व युद्ध ना हुआ होता तो वो 6 ओलंपिक में शिरकत करने वाले दुनिया के संभवतः पहले खिलाड़ी होते। और इस बात में शक की कतई गुंजाइश नहीं है कि इन सभी ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी भारत के नाम ही होता।
बिल्कुल। और अब चलते हैं हम एक ऐसी पर्सनालिटी पे जो हमारी ही नहीं, हमसे पहले जो हमारे आर मदर्स एंड फादर्स, यू नो, इवन दे हैव लव्ड दिस मैन सो मच। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट देवानंद, हु वाज एन इंडियन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर नोन फॉर हिज वर्क इन हिंदी सिनेमा। आनंद इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। पर यहाँ पर मुकेश, मैं मुझे लगता है कि आप यहाँ पर एक उनका एक कोई गाना सुनाना चाहते हैं।
बिल्कुल, सबसे पहले ये गाना ही सुन लेते हैं।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला।
बॉलीवुड में देव साहब के नाम से मशहूर एक जिंदा दिल और भले इंसान के रूप में वो प्रसिद्ध थे। और भारतीय सिनेमा में 2 पीढ़ियों तक लगातार हीरो बने रहने वाले कलाकार के विषय में यदि विचार करें तो केवल एक ही नाम उभरता है और वो है देवानंद। कभी अपनी एक फिल्म में उन्होंने एक गीत गुनगाया था जो अभी हमने सुनवाया, जिंदगी का गीत निभाता चला गया, और शायद यही गीत उनके जीवन को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। देवानंद का नाम हिंदी सिनेमा जगत के आकाश में स्टाइल गुरु के रूप में जाना जाता है। सदाबहार अभिनेता देवानंद को लोग एवरग्रीन देव साहब कहकर पुकारते थे और सदाबहार देवानंद का जलवा अब भी बरकरार है। 6 दशक से अधिक समय तक रुपहले पर्दे पर राज करने वाले देवानंद साहब का 88 वर्ष की उम्र में हृदय गति रुक जाने से 3 दिसंबर 2011 को देहावसान हुआ था। तो उनकी एक और फिल्म का गाना सुने
जी।
कभर करे पुकार प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
And now we are going to talk about a major milestone film in Anand's career, and that film was Guide, jo ki 1965 mein aayi thi, and based on the novel by R.K. Narayan, it became a box office success and was entered for best foreign language film at the 38th Academy Awards. Aur Mukesh, hum thakenge nahi unke gaane sunane se yahan par, so ek gaana aur sun lete hain hum, Gaata Rahe Mera Dil.
Mera dil, tu hi meri manzil hai, kahin bite na ye raatein, kahin bite na ye din, kahin bite na ye.
और अब हम याद कर रहे हैं परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक लांस नायक अल्बर्ट एक्का को। आज उनकी पुण्यतिथि है। ये रांची झारखंड के निवासी थे और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए वो शहीद हुए थे। इन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया और वो एक बिहारी ऐसे सैनिक थे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
Moving on to another great personality, we are now talking about Dr. Rajendra Prasad, who was an Indian politician, lawyer, journalist and scholar who served as the first president of India from 1952 to 1962. He joined the Indian National Congress during the Indian independence movement and became a major leader from the region of Bihar. A supporter of Mahatma Gandhi, Prasad was imprisoned by British authorities during the Salt Satyagraha of 1930.
और आज जयंती है केवल 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस की। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास क्रांतिकारियों के सैकड़ों साहसिक कारनामों से भरा पड़ा है और ऐसे ही क्रांतिकारियों की सूची में नाम आता है खुदीराम बोस का।
और लास्ट में आई थिंक बिकॉज वी विल नॉट हैव टाइम आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जिमी शेरगिल जिनका बर्थडे है ऑल्सो क्रेडिटेड एज हु इज एन इंडियन एक्टर एंड प्रोड्यूसर प्राइमरली वर्क्स इन हिंदी एंड पंजाबी फिल्म्स एंड शेरगिल इज अ रिसिपिएंट ऑफ वन प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड एंड वन पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड एंड हियर हम सुन लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना उनकी मूवी मात
चप्पा चप्पा चरखा चले हाय चप्पा चप्पा चरखा चले
और आज जन्मदिन है भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी और कप्तान मिताली राज का वो टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। तो श्रोताओं इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाए तो अनुमति दें मुकेश कुमार और रेणु कटारिया को आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल।
यस प्लीज प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।